జయం రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయం రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ గోపీ జనవరే జయ గోపీ జనవల్లభ గిరివరే యశోదానందన జగజన రంజన యశోదానందన జగజన రంజన యమునా తీరా బన తీరా బన చారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ అభయకరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాది కీ జయ గ్రంథరాశ్రీ చతన్న చరితామృత కీ జయ గౌర్ ప్రేమానంది ఆల్ గ్లోరీ టు సిమెంట్ బోటీ ఆల్ గ్లోరీ టు సిమెంట్ బోటీ ఆల్ గ్లోరీ టు సిమెంట్ బోటీ ఆల్ గ్లోరీ టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరాంగ హరి కృష్ణ. तो आज हम श्रवण करेंगे चैतन्य चरितामृत की एक बड़ी अद्भुत लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहली बार सड़क में कीर्तन किया. उनके आदेश से नवद्वीप के घर घर में कीर्तन हो रहा था और चैतन्य महाप्रभु एक घर में कीर्तन करते थे. आप जानते वो कौन सा घर था जिस घर में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे? श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर कीर्तन करते थे. लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें फिर चैतन्य महाप्रभु को घर से बाहर निकलना पड़ा और फिर शान काजी का भी विरोध भगवान ने किया. तो ये जो है बड़ी अद्भुत घटना है.
महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे नागरिकों को कीर्तन करने का आदेश दिया तथा घर घर में कीर्तन होने लगा. कीर्तन ध्वनि सुनकर वहाँ के मुसलमानों ने चांद काजी से शिकायत की तथा काजी ने एक घर में आकर मृदंग तोड़ डाला तथा धमकी दी कि यदि आगे चलकर जोर जोर से कीर्तन होगा तो सारी संपत्ति छीन लूंगा.
इतना ही पर्याप्त नहीं है, मुसलमान भी बना दूंगा अगर आगे सड़क में कीर्तन किया तो. आरे जदि कीर्तन करते लगे पैमू सर्वस्व दंडी अकार जाति जलायू. और मुसलमान बनाना बहुत आसान था उस समय. क्या था कि अगर पानी भी छलक दे मुसलमान तो हिंदू जाति में फिर उसको शामिल नहीं किया जाता था. तो उसको मुसलमान बनना ही पड़ेगा. अगर हिंदू समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा तो क्या करेगा? मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो किसी न किसी समाज में तो रहना पड़ेगा. तो मुसलमानों के समाज में उसको जाना ही पड़ेगा, है ना? तो ये हाल था. तो ऐसा कहकर के काजी घर चला गया. किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से वर्जित किए जाने के कारण दुखी भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना दुख यह सुनाया। नगरिया लोक प्रभु थाने ने विदित पाइया बड़े सुख। अब उस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं थे जब शांता जी ने अत्याचार किया था और धमकी दी कि कीर्तन नहीं होगा। और जब चैतन्य महाप्रभु से शिकायत उन भक्तों ने करी तो भगवान जो है बहुत गुस्सा हुए और क्या बोले, महाप्रभु चैतन्य आगे दी जाओ संकीर्तन करो, मैं आज सारे मुसलमानों का संहार कर दूंगा। प्रभु आज्ञा देना जा कर कीर्तन मुए संगारे मु आज सकल जवन। प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं कि यदि हम बात बात में हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो अपना काम चलाना हम लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। अतः हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चरणों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने चांद काजी के आदेश का उल्लंघन किया किंतु तर्क से उसे समित कर दिया। चांद काजी को फिर उन्होंने वैसे दंड नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु ने तर्क से उसको हराया। अब सारे जो भक्त थे घर लौट करके संकीर्तन करने लगे किंतु काजी के आदेश से वे चिंता मुक्त नहीं थे, चिंतित भी रहते थे। भगवान के आदेश से कीर्तन तो करने लगे लेकिन चांद काजी का डर फिर भी बना रहा। तो भगवान सोचते हैं कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इनको अभी विश्वास नहीं हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो जब तक वो दिखाए नहीं अपनी शक्ति तब तक इनका जो है डर दूर नहीं होगा। घरे गिया सब लोग चढ़ाए कीर्तन काजीरा भाई स्वच्छंद नहीं चमकते मन। लोगों के मनों की चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने उन सबों को बुलाया और इस प्रकार कहा, सभारे अंतारे भय प्रभु मने जानी कहीं तेला गिला लोग शीघ्रता की आनी। अब महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं प्रत्येक नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूंगा, अतः तुम लोग संध्या समय नगर को सजाओ। तो ये पहला दिन है जो कि सड़क में कीर्तन भगवान करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि पूरे नगर को सजाओ। और नगर नगर का मतलब ये है कि वो नवद्वीप जो है नौ द्वीपों से बना है तो उनको नौ नगर बोलते हैं। तो नगर नगर में कीर्तन करेंगे, नौ द्वीपों में वो कीर्तन करेंगे। नगरे नगरे आज करीमु कीर्तन संध्या काले कर सभे नगरे मंडन। संध्या समय घर घर में दीपक जलाओ, मैं हर एक की रक्षा करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन काजी आकर हमारे कीर्तन को रोकता है। संध्या के देवोटी सभे ज्वाले घरे घरे देखे कौन काजी आखी मोरे मना करे। अब संध्या समय गौर सुंदर महाप्रभु बाहर निकले और कीर्तन करने के लिए उन्होंने तीन मंडलियां बनाई। एता कहे संध्या काले चले गौर राय कीर्तन कैले प्रभु तीन संप्रदाय। इस मंडली के आगे आगे हरदास ठाकुर नाच रहे थे और मंडली के बीच में परम हर्ष के साथ अद्वैत आचार्य नाच रहे थे। आगे संप्रदाय नृत्य करे हरे दास मध्य नाचे आचार्य गोसाई परम उल्लास। गौर सुंदर मंडली के पीछे नाच रहे थे और नित्यानंद प्रभु मंडली के साथ साथ चल रहे थे। पाठे संप्रदाय नृत्य करे गौर चंद्र सारे संगे नाची बोली प्रभु नित्यानंद। महाप्रभु की कृपा से श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तृत वर्णन चैतन्य मंगल में किया है। वृंदावन दास यहाँ चैतन्य मंगले विस्तारी वर्णी अत्यन प्रभु कृपा बले। वृंदावन दास ठाकुर का जो ग्रंथ है वो चैतन्य मंगल है लेकिन बाद में उन्होंने उसका नाम बदल दिया, क्या, चैतन्य भागवत। तो भी चैतन्य भागवत कहा जाता है। चैतन्य भागवत में हमने पढ़ा था इसका वर्णन बहुत विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है कि भगवान कैसे कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन, भगवान की शोभा का वर्णन है, उनके नृत्य का वर्णन है, उनकी मूर्छा का वर्णन है और जो उनके साथ जो भक्त हैं वो भी क्या क्या बोलते हैं और कैसे कैसे चेष्टाएं करते हैं, बहुत विस्तार से वर्णन है। इस तरह कीर्तन करते हुए नगर के हर गली कूचे की परिक्रमा करते हुए अंत में वे काजी के दरवाजे पर पहुंचे। हेमत कीर्तन करे नगर भ्रमिला भ्रमित सब काजी द्वारे गेला। क्रोध से गर्जना करते हुए सारे लोग महाप्रभु के संरक्षण में ऐसा करते हुए पागल हो उठे। अब तान का ये कोई डर नहीं है, भगवान है साथ में, जिससे बहुत डरते थे अब कोई डर नहीं है, उसको जोर से ला रहे हैं चांद काजी के द्वार पर ही आकर के। गर्ज तर्ज करे लोग करे कोलाहल, गौर चंद्र बले लोग प्रत्यय पागल। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, काजी ने आदेश जारी किया था कि कीर्तन ना किया जाए, किंतु जब ये बात महाप्रभु को बताई गई तो उन्होंने काजी के आदेश का उल्लंघन करने की आज्ञा दी। चेतन उनके सारे भक्त क्रुद्ध होते हुए भी उत्साह पूर्ण होने से जोर जोर से शोर कर रहे थे। अब कीर्तन की ऊंची ध्वनि से काजी बहुत डर गया और अपने घर में छिप गया। लोगों को इस प्रकार विरोध करते और क्रोध से गर्जना करते सुनकर काजी अपने घर से बाहर आया नहीं। कीर्तन रानी से काजी लुकाए लगरे, गर्जने गर्जने सुनी नहाए बाहिरे। आगे अब शुद्ध लोग काजी के घर को तोड़ फोड़ करने लगे और उसके फूल के बगीचे को उजाड़ने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। होता तेलो क्या भांगे काजी धरे पुष्प बन, विस्तारी वर्णी लाई यहाँ दास वृंदावन। अब महाप्रभु काजी के घर पहुंच गए तो वे दरवाजे पर बैठ गए और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को घर के अंदर भेजा, किस लिए? काजी को बुलाने के लिए। कुछ सम्मानित व्यक्तियों को भेजा के अंदर जाओ, उसको बुला के लाओ अंदर से। तबे महाप्रभु तार द्वारे से बसीला, भव्य लोग पठाई काजी रे बोलैला। अभी जो घटना है ये चेतन चरितामृत में है, चैतन्य भागवत में नहीं है, क्योंकि चैतन्य भागवत में इस घटना का इतना विस्तार से वर्णन किया है कि अगर ये बात और बताते तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाता। इसे वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना को छोड़ दिया तो कृष्णदास कबीरा इस घटना का विशेष वर्णन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी से क्या बातचीत की है। इसलिए विशेष रूप से ये मैं आप लोगों को अब सुनाना चाहता हूँ कि कैसे बातचीत की उन्होंने भगवान ने। तो भगवान ने लोगों को भेजा। अब जब काजी अपना सिर झुकाए आया तो महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और बैठने के लिए आसन दिया। वो बहुत डर रहा था तो सिर झुका करके आया तो महाप्रभु उसको सम्मान देते हैं कि बैठो, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर थोड़ा बातचीत करेंगे। दूर हैते आईला काजी माता नो आईया, काजी रे बसैला प्रभु सम्माने करिया। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, जब काजी उनसे मिलने आया तो उन्होंने समुचित सत्कार किया और बैठने को आसन दिया, क्योंकि वह एक सम्मानित सरकारी अधिकारी था। इस तरह महाप्रभु ने अपने आचरण से हमें शिक्षा दी है। आगे अब महाप्रभु ने मित्रता पूर्वक उससे कहा, क्या कहा? महोदय मैं आपके घर मेहमान के रूप में आया हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में आया हूँ आपके घर, और आप मुझे देख करके अपने कमरे में छिप गए, ये कैसा शिष्टाचार है। प्रभु भले आमी तो मान आई लाम अभ्यागत, आमी देखे लोकैला ये धर्म की मत। काजी ने कहा आप मेरे घर नाराज होकर आए हैं। अब काजी उत्तर देता है कि मैं क्यों छिप गया, क्योंकि आप कैसे आए हैं, नाराज होकर के आए हैं। मैं हूँ कि आपको शांत करने के लिए तुरंत नहीं आ पाया, उल्टी अपने को छिपा लिया ताकि आप शांत हो जाएं, इसलिए मैं छिप गया था। काजी कहे तुम आए क्रुद्ध है तुम शांत कर आई ते रही लोकैया, किंतु अब आप शांत हो चुके हैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप जैसे अतिथि का स्वागत कर रहा हूँ। एवे तुम्हें शांत है ले आती लांग, भाग्य मोर तुम आहिन अतिथि पाई लांग। अब संबंध जोड़ रहा है वो काजी भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ रहा है। कैसा? जाति का तो नहीं है, लेकिन गांव का संबंध बता रहा है कि गांव से हम आपके क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते थे। नीलांबर चक्रवर्ती मतलब कौन है? चैतन्य महाप्रभु के माता के पिता हैं। तो नीलांबर चक्रवर्ती गांव के नाते से मेरे चाचा लगते थे, मतलब मेरे पिता के मित्र थे, है ना? तो मेरे पिता के मित्र थे तो मेरे चाचा लगे गांव के रिश्ते से, है ना? ग्राम संबंध चक्रवर्ती है मोर चाचा, देह संबंध है ते है ग्राम संबंध है चाचा। और ये नाता गांव का जो नाता है वो शारीरिक संबंध से ज्यादा सच्चा होता है। तो असली मैं आपका जो ना असली मामा से ज्यादा सच्चा मामा हूँ, तो गांव के हिसाब से जो ना मैं आपका मामा लगता हूँ। मामा लगा कि आपके जो पिता के आपकी माता के जो पिता हैं वो हमारे चाचा लगते हैं, तो मैं आपकी माता का भाई लगा। तो आपके असली मामा से ज्यादा असली हूँ मैं गांव के संबंध से। नीलांबर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना है, अच्छा तुम इस नाते मेरे भांजे हुए हो। नीलांबर चक्रवर्ती है तुम्हारे नाना, से संबंध हो तुम हमारे भागीना। जब भांजा अधिक नाराज होता है तो मामा सहता है कि ना, तो मामा सहन करता है। और जब मामा कोई अपराध करता है तो भांजा उस पर ध्यान नहीं देता, ठीक है ना? ये तरीका है अपनी रक्षा करने का, तो शिक्षा दे रहा है। ये शिक्षा मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखो। मामा अगर अपराध करे तो भांजे को ध्यान नहीं देता इस पर। भागीना रे क्रोध मामा अवश्य सहाय, माँ तुले रे अपराध भागीना ना लय। इस तरह महाप्रभु और काजी एक दूसरे को संकेतों से बातें करते रहे। संकेत का मतलब जानते क्या है? पिछले जन्म का संकेत कर रहे थे वो, बाकी लोग नहीं समझ रहे थे। पिछले जन्म में क्या थे? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण थे, और ये चांद काजी क्या थे? कंस मामा थे। तो डर रहा था ना बहुत ज्यादा, कंस मामा डर रहे हैं बहुत ज्यादा कि भांजे साहब कुछ कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा दे रहा है कि मामा कोई अपराध करे तो भांजा सहन करता है, कुछ करता नहीं है। ये सारा कर रहा था पिछले जन्म का, कि पिछले जन्म में जो किया था गड़बड़ इस बार नहीं करना। तो बाकी लोग है ना इस बातों के अर्थ को नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बातें क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं दोनों। हे मत तुम्हार कथा है छोटे छोरे, बेतारे रे अर्थ के बोझे ते न पारे। महाप्रभु ने कहा हे मामा मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। काजी ने उत्तर दिया स्वागत है, अपने मन की बात मुझे बतलाओ। प्रभु कहे प्रश्न लागे आई लाम तुम्हारा स्थाने, काजी कहे आज्ञा कर जे तुम्हारे मने। महाप्रभु ने कहा आप गाय का दूध पीते हैं, अच्छा गाय आपकी माता हुई, ठीक है कि नहीं? गाय का दूध पीते तो गाय आपकी माता हुई, और बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाते हैं, इसलिए बैल आपका कौन है? पिता है। प्रभु कहे गोदुग्ध का हो गाभी तुम्हार माता, वृक्ष अन्न उपजाए ताते हो पिता। क्योंकि गाय और बैल आपके माता पिता हैं, फिर आप उन्हें मार कर कैसे खाते हो? ये कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसा पाप करते हो? पिता माता हमारे खाओ एवा कौन है धर्म, कौन बले करे तुम ए मत वे कर्म। काजी ने उत्तर दिया जिस तरह आपके शास्त्र है जिन्हें वेद कुरान कहा जाता है, ऐसे हमारा शास्त्र कुरान कहलाता है। काजी कहे तुमार देखे वेद है कुरान, तैसे आमार शास्त्र किताब है कुरान। कुरान के अनुसार दो रास्ते हैं, भोग की इच्छा को प्रबल करना और भोग की इच्छा को कम करना। आसक्ति कम करने का मार्ग निवृत्ति मार्ग है, उसमें हत्या निषेध है। और भौतिक कार्यकलापों के मार्ग में गोवध का नियम है, यदि शास्त्र के अनुसार वध किया जाए तो पाप नहीं लगता। तो काजी बड़ा विद्वान था, इसलिए उसने अभी और तर्क दिया। उसने चैतन्य महाप्रभु कहा आपके शास्त्रों में गोवर्ध का आदेश मिलता है। अभी देखा उसने कुछ उत्तर दे दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु को और आगे भी उसने जवाब दिया, क्या दिया, आपके शास्त्रों में भी गोवर्ध का आदेश मिलता है। इसी आदेश के बल पर बड़े बड़े मुनि गो में भी यज्ञ करते थे। काजी के कथन का विरोध करते हुए महाप्रभु ने कहा वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध ना किया जाए, अतः कोई भी हिंदू कभी गोवध के लिए तैयार नहीं होता है। प्रभु कहे वेदे कहे गोवधन से अतएव हिंदू मत न करे गोवधन। वेदों पुराणों में स्पष्ट कहा गया है यदि कोई किसी जीव को जिंदा कर सकता है तो प्रयोग करने के लिए उसे मार सकता है। तो जो मुनि लोग गो में देख करते थे तो गाय को जिंदा करते थे, इसलिए जी आए थे पारे जब तब मारे प्राणी वेद पुराने आते हैं न आज्ञा वाणी। इसलिए मुनि कभी कभी बूढ़े पशुओं को मारते थे और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उसे जिंदा करते थे। अतः एवं जरंगम मारे मुनिगण वेद मंत्र सिद्ध करे तहारे जीवन। ऐसे वृद्ध पशुओं का वध और फिर उनको जवान बनाना वास्तव में वध नहीं है बल्कि बड़ा लाभ होता है इसमें। जरद गो है जुवा है आरवाणे तार वध नहीं है उपकार। पहले ब्राह्मणों में ये शक्ति होती थी इसलिए वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते थे, अब कलयुग में ब्राह्मण इतने शक्तिशाली नहीं है इसलिए ये कार्य बिल्कुल वर्जित है। कली काले कैसे शक्ति न है के ब्राह्मण अतएव गोवध करे न करे एक हने। कलयुग में 5 कार्य वर्जित है, अश्वमेध यज्ञ मना है, गोमेध यज्ञ मना है, संन्यास ग्रहण करना मना है और पितरों को मांस का पिंड दान देना मना है और भाई की पत्नी से पुत्र उत्पन्न करना मना है। अश्वमेध अंगमालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवर सुतोत्पातिम कलोपंच विवर्जये। क्योंकि तुम मुसलमान लोग मरे पशुओं को चिंता नहीं कर सकते अतः तुम उनके बदले के जिम्मेदार हो इसलिए तुम नरक जाते हो, तुम्हारा मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, तुम नरक जाओगे। भगवान कहते हैं तुम्हारा जी है ते नार वध मात्र संग नरक है ते तुम्हार ना है के निस्तार। गोवध करने वालों को उतने 1000 सालों तक नरक में रहना पड़ता है जितने गाय के शरीर में रोए होते हैं। गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने क्या, उसमें 1000 वर्ष, जितने रोए हैं गाय के शरीर में उसमें 1000 का गुणा करो उसने वर्ष तक क्या करना नरक में रहना। गो अंगे जतलो तत सहस्र वत्सर गोवधी रौरव मध्य पचे निरंतर। आपके शास्त्र में बहुत त्रुटियां हैं और भ्रांतियां हैं और इसलिए ऐसे आदेश दिए गए हैं जो तर्क विरुद्ध हैं। तुम्हारे तुम असमार शास्त्र करता से ही भ्रांत है लन ना जाने शास्त्र रे मन मर्म ऐसे आज्ञा दी लन। चैतन्य महाप्रभु के कथन को सुनकर चांद काजी कुछ बोल नहीं पाया, अचुप हो गया, ऐसा जवाब दिया कि कोई जवाब नहीं। अब काजी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। सुन शब्द है काजी ना है पूरे बाणी विचारे अकाए काजी पर अभव मानी। हिंद माई पंडित आपने जो कहा है वो पूरी तरह सत्य है, हमारे शास्त्र अभी हाल के बने हैं और ये विचार पूर्ण नहीं है। तुम जे कही ले पंडित से ही सत्य है आधुनिक हमारे शास्त्र विचार सहन। मुझे पता है हमारे शास्त्र कल्पना से भरे हैं फिर भी मुसलमान होने के नाते अपनी जाति के लिए हमें स्वीकार करना पड़ता है, हमारी जाति का दबाव है इन्हें हमें मानना पड़ता है। कल्पते आमार शास्त्र आमी सब जन जाति अनुरेध तब से शास्त्र मन। काजी ने अंत में कहा कि मुसलमानों के शास्त्र तर्क पुष्ट नहीं है, तो महाप्रभु हंसते हुए अब दूसरी बात बोलते हैं। एक बात में हरा दिया उसको, अब दूसरी बात बोलते हैं। क्या कहते हैं, हे मामा अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ और आप सत्य बताना, धोखा देने का प्रयास नहीं करना। कि नहीं धोखा देने का प्रयास नहीं करना, सबसे बता रहा अभी। अरे एक प्रश्न करे तुम्हें तुम्हें मामा यथार्थ का ही बेचल न बंसी में आमा। आपके नगर में सदा नाम संकीर्तन होता रहता है, सदैव संगीत का शोर गाना और नाच चलता रहता है। तुम्हारे नगर है सदा संकीर्तन, बाजे गीत को लाल संगीत नर्तन। तो भगवान क्या पूछ रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, भगवान ने क्या प्रश्न किया। मुसलमान होने के नाते आप हिंदुओं को मनाने का मना करने का विरोध कर सकते हैं, किंतु अब आप उन्हें रोकना नहीं है, आपने उनको रोका नहीं है, इसका कारण मैं नहीं समझा। आपने पहले मना किया था, उसके बाद भी कीर्तन चलता रहा, तो आपने फिर बाद में कुछ किया क्यों नहीं। भगवान ये पूछ रहे हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि भक्तों को बहुत डर लग रहा था ना। यद्यपि भगवान ने तो कहा था कि कोई डर नहीं है, आप कीर्तन करो, अगर वो मना करेगा तो उसका विनाश कर लूंगा, लेकिन तो भी भक्तों को डर लगा हुआ था। इसी सब भक्तों के सामने ही शामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि तुमने जब मृदंग तुलवाया था, कीर्तन बंद करवाया था, हा? और मनाही की थी कीर्तन करने की, उसके बाद वो कीर्तन चलता रहा, तो तुमने फिर कुछ किया क्यों नहीं, है ना? है? अब उसी के द्वारा कहलवाएंगे भगवान। तुम ही काजी हिंदू धर्म विरोध अधिकारी, बुझे न पारी। काजी ने कहा, अब काजी क्या उत्तर देता है, अभी वो घुमा करके बोल रहा है, अभी सही से नहीं बताना है, घुमा करके बोल रहा है। क्या कहता है, सभी लोग आपको गौरहरी कहते हैं, सभी लोग आपको गौरहरी कहते हैं, अब मैं भी आपको गौरहरी कहूंगा। जवाब नहीं दे रहा है, कहता सब लोग आपको गौरहरी कहते हैं, मैं भी आपको गौरहरी कहूंगा। काजी भले सबे तो मैं भले गौरहरी, सही नाम आने तो मैं संबोधन करी। ठीक गौरहरी, कृपया सुनिए, यदि आप एकांत स्थान में आए तो मैं आपको कारण समझा दूंगा, एकांत में आपको बता दूंगा कारण क्या है। सुने गौर हरि ए कृष्ण रे कारण, निवृत हाओ जदि तज करि निवेदन। लेकिन भगवान तो सबके सामने सुनवाना चाहते थे कि सबका डर दूर करना है, भगवान को तो सब पता है ना, तो वो कहता है मैं आपको ही बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा, और भगवान चाहते हैं कि सबको बताए। प्रभु बोले, महाप्रभु ने उत्तर दिया कि सारे लोग मेरे परम अंतरंगी हैं, आप संकोच भाव से कहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जो भक्त हैं ये मुझसे अलग नहीं है, तुम अकेला समझो अपने को, कोई चिंता मत करो। प्रभु बोले, ये लोग अमर अंतरंग है, स्फुट कारी का तुम्हें नाकारी है भाई। काजी ने कहा, जब मैं हिंदू के घर गया और वहां मृदंग तोड़कर संकीर्तन करने की मनाही करा दी, तो उसी रात मैंने सपने में एक भयानक गर्जन करता हुआ सिंह देखा। अब वो सपना था या सचमुच था, वो अभी पता चलेगा, अभी तो कह रहा सपने में देखा, लेकिन वास्तव में सपना नहीं था, वो सचमुच था। वो तो कहता है, क्या कहता है, क्या देखा उसने, एक भयानक गर्जना करता हुआ शेर देखा मैंने, इसका शरीर तो मनुष्य जैसा था पर मुंह शेर का था। अब वो नहीं जानते क्या है, तो आप लोग जानते कौन है, नरसिंह भगवान है। तो वो कहता वो शेर था, और कैसा शेर था पता नहीं, कैसा शेर था वो। काजी कहे, जब आमीन दुर्घर गिया, कीर्तन कारी लू माना मृदंग भांगिया, सही रात्र एक सिंह माँ भयंकर, नारदे सिंह मुख गर्ज बिस्तर। और मैं सो रहा था तो वो शेर मेरी छाती पर चढ़ गया और अट्टहास करते हुए दांत कटकटा रहा था, बहुत गुस्से में दांत कटकटा रहा था। सहे ने अमार ऊपर लाफ दी अचरी, अट्टहास करे दंत करे मड़ी। और उसे छाती पर, मेरी छाती पर अपना नाखून गला दिया, घुटेर दिया नाखून। बात तो बाद में करी, पहले नाखून घुटेर दिया तब बात करी उसने। और गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तूने मृदंग तोड़ा है, मैं तेरी छाती फोड़ दूंगा। तो फिर मृदंग तोड़ा, मैं तेरी छाती तोड़ दूंगा। मोर भुके नखे दिया घोर सरे बले थाड़ी मो तो मार भुके मृदंग बदले।
मृदंग का बदला, मृदंग छोड़ने का बदला क्या होगा? छाती जो तेरी छाती छोड़ूंगा।
तूने मेरे संकीर्तन पर प्रतिबंध लगाया है, अतः मैं तेरा विनाश कर दूंगा। उससे डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपने लगा, अब कुछ बोल नहीं सकता। मोर कीर्तन माना कर करे मुतोर छे आंखें मुने कापी आमे पाया बड़े भय। वो जिस तरह डरा देखकर उसको दया आ गई, उस सिर को दया आ गई, तो बोला मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही अभी डराया है, लेकिन अब मैं तेरे ऊपर दया कर रहा हूँ। गीत देखे सिंह बल आई असद तोरे शिक्षा देते कई तवरे पर आ जाए। उस दिन तुमने ज्यादा उत्पात नहीं किया था, तुमने ज्यादा उत्पात नहीं किया था, मतलब किसी भक्त को मारा पीटा नहीं था, मृदंग ही तोड़ा था, तो ज्यादा उत्पात नहीं किया था, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया है, तेरे प्राण नहीं लिए हैं। तेरे ने बहुत नहीं कह ले उसके पास तेरी क्षमा करे न करे वो प्राण घा। किंतु अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो मैं सहन नहीं करूंगा, और तुम्हारे सारे परिवार को और तुमको क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। अगर कुछ किया तो मैं अच्छे जैसे पुना कर तब न सही मुँह सवन से कुमारे मारे जवान ना सही मुँह। ये कहकर वो शेर चला गया, किंतु मैं बहुत ही भयभीत था, और देखो फिरने में बने उसके नाखून के चिन्ह है, अब दिखा रहा है, तो क्या था, सपना था? ये सपना नहीं था, पहले से सपना बताया लेकिन सपना नहीं था वो। ये कहे सिंह जेल करने लगे, अब सबका डर दूर हुआ, भगवान डर दूर करना चाहते ना, सबका डर दूर हुआ। ऐसे बले का जी ने जे मुख दिखाई तुमने देखे सर्व लोग आश्चर्य मानी। काजी ने कहा मैंने इस घटना की चर्चा किसी से नहीं की, किसी से बताता तो अपनी इज्जत खराब होती ना, इसलिए किसी को बताया नहीं मैंने ये बात, अभी पहली बार बता रहा हूँ। किंतु उसी दिन मेरा एक अर्दली मुझसे मिलने आया, अर्दली मतलब सिपाही। काजी कहे एवं आम करी ना कहे कई दिन हमारे कहती ज्यादा आये। अब उसने क्या कहा, जब मैं संकीर्तन रोकने गया तो सहसा मेरे मुंह में एक जलती लपट गिरी, मेरे मुंह के ऊपर एक जलती हुई लपट गिर गई, आग, जलती हुई आग आ गई मेरे मुंह में। जब मैं कीर्तन रोकने गया था तो आता से जलती हुई आग मेरे मुंह में गिरी। आशी कहे जेलो मोह कीर्तन से जीते अपने उल्का मोर मुखे लागे आचम्बित। मेरी दाढ़ी गल गई, मैं कीर्तन रोकने गया था, आकाश से आग मेरे मुंह में गिरी, मेरी दाढ़ी गल गई और गालों पर फफोले पड़ गए। जो भी सैनिक वहां गया वैसा ही हाल हुआ उसका। पूरे लैसा कल दाढ़ी मुखे है भ्रम जैसे आता जाए तार ए देवे रम। ये देखकर मैं और डर गया, रात में जो घटना हुई थी वो तो हुई थी, और जितने सिपाही आ रहे हैं सब ये सब घटनाएं बता रहे हैं कि जो कीर्तनों में जाता है ये हो रहा है, सबके साथ ये हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि अब कीर्तन मत रोको और तुम लोग घर में बैठ जाओ चुपचाप, कीर्तन को कोई नहीं रोकना। तहा देखे रहे नो महिमा भय पैया कीर्तन न वर्जिए घरे रहता बस मिया। तब सारे मुसलमानों ने शिकायत की कि इस आदेश से तो नगर में स्वच्छंद कीर्तन होता रहेगा। अब मुसलमान कहते हैं फिर तो हिंदुओं का राज हो जाएगा, अगर कीर्तन नहीं बंद कराया तो फिर तो ये हिंदुओं का राज हो जाएगा, फिर मुसलमानों का फिर क्या हुआ। सब ऐसा नगर है स्वच्छंद कीर्तन सोने सावन से आठ कैला निवेदन। इस तरह हिंदू धर्म तो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सदैव हरी हरी की ध्वनि होती है और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। नगर हिंदू रे धर्म बड़े में अपार हरे हरे ध्वनि भय नहीं सुने आर। एक मुसलमान ने कहा हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं, वे हंसते रोते नाचते कीर्तन करते और अपने शरीर पर धूल मलकर जमीन पर गिरते हैं। हार मिथे कहे हिंदू कृष्ण कृष्ण बने हाथे कंधे नाचे गाये गाड़े जाए धोली। हिंदू लोग हरी हरी का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं, यदि राजा सुन लेगा तो निश्चय आपको दंड देगा। राजा मतलब उससे भी ऊपर बंगाल का राजा है हुसैन साहब, हाँ नवाब, अगर वो सुन लेगा तो आपको दंड देगा। हरे हरे करे हिंदू करे कोलाहल, पात साहे सुन ले तुम्हार करी बे कैथल। तब मैंने इन मुसलमानों से पूछा कि मैं जानता हूँ कि हिंदू तो स्वभाव से हरी हरी उच्चारण करते हैं, तो वो तो नाम लेते हैं क्योंकि उनके ईश्वर का नाम है, लेकिन तुम लोग मांस खाने वाले मुसलमान फिर क्यों उनके हिंदुओं के ईश्वर का नाम लेते हो? तुम लोग क्यों नाम ले रहे हो? वो लोग तो नाम ले रहे हैं भाई, वो तो उनके ईश्वर का नाम है, तुम लोग क्यों नाम ले रहे हो हिंदुओं के ईश्वर का? तुम लोग हरिहरी क्यों बोल रहे हो? किसने कहा? चांदकाजी ने। तुम तेजा बन है या कहने अनुछन, हिंदू रे देवता नाम लाह के कारण। मुसलमान ने कहा कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि कुछ कृष्णदास कहलाते हैं, कुछ रामदास कहलाते हैं और कुछ हरिदास कहलाते हैं, ये सदैव हरि हरि का उच्चारण करते हैं, तो ये लगता है कि ये चोरी करते हैं। हरि हरि का एक मतलब होता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, तो तुम लोग हरि हरि बोलते हो उसका मतलब है कि तुम लोग कुछ चोरी करते हो, तो मजाक में मैंने ये बोला। तभी से मेरी जीव निरंतर हरि हरि का उच्चारण करती है, तो मैं तो मजाक में बोला था और जीप में पकड़ गया ये हरि नाम मेरे जीप में। अब मैं भी बोलने लगा, मैंने तो हंसी में कहा था उनकी हंसी उड़ाने के लिए, और वो पता नहीं कैसा नाम है ये मेरी जीप में पकड़ गया। अब मेरी जीप भी हरि हरि बोल रही है, मेरी इच्छा नहीं होती है बोलने की, लेकिन वो जीप बोलती जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, भैया मेरी जीप बोलती जा रही हरी हरी है के जीवा मोर बले हरी हरी, इच्छा ना हो तब भी बले की हो पाए करी। दूसरे मुसलमान ने कहा कृपया मेरी बात सुनो, जिस दिन से मैंने कुछ हिंदुओं से मजाक किया तभी से मेरी जीव हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगी है, और मैं नहीं जानता कि हिंदुओं का एक कैसा मंत्र है, कि कैसा जादू है कि मेरे मुंह से निकल रहा है हरे कृष्ण मंत्र। हार लिखे कहे सुन आमिता आमते, हिंदू के प्रयास कहनो से दिन हाई तेन, जेवा कृष्ण नाम करे ना माने बर्जन, ना जाने की मंत्रो सा जे जाने हिंदू गन। ये सब सुनने के बाद मैंने सारे मुसलमानों को अपने अपने घरों में भेज दिया। अब 5-7 अभी स्वास्थ्य हिंदू मेरे पास आए। अब ये हिंदू कैसे थे जो चैतन्य महाप्रभु से ईर्ष्या करते थे, निंदक थे, भी आए और उन्होंने शिकायत की निमाई पंडित ने तो हिंदू धर्म तोड़ दिया है। देखो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी कुछ निंदक थे जो उनकी निंदा कर रहे थे, उसे संकीर्तन प्रणाली चलाई है जिसे हमने किसी शास्त्र में सुना नहीं है। जब हम मंगल चंडी की पूजा के लिए रात्रि जागरण करते हैं तो बाजा बजाना, नाचना और कीर्तन करना अच्छा लगता है। निमाई पंडित पहले अच्छा लड़का था, सिंधु जब से वह गया से होकर लौटा है तो अलग से आचरण करने लगा। अब वह सभी प्रकार के से गाता है, ताली बजाता है, मृदंग और मंजीर बजाता है और बहुत तेजी से गाता है कि हमारे कान बहरे हो जाते हैं। उसके करे गाए गीत देह कर तालीम, मृदंग करताल संग करने लागी तालीम। समझ में नहीं आता वो क्या खाता है जिसे पागल होकर नाचता है, गाता है, हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है और भूमि पर लौटने लगता है। उसने संकीर्तन करके सारे लोगों को एक तरह से पागल बना दिया है। रात में हम सो नहीं पाते हैं, सदा जागते रहते हैं। अब उसने अपना नाम निमाई छोड़कर गौरहरि नाम चालू किया है, उसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है। अब नीच जाति के लोग बारम्बार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। देखा कि ये ब्राह्मण जो है ना जाति ब्राह्मण थे, तो वे जो है ना बड़े दुखी हैं कि निमाई पंडित ने जो है ना नीचों को भी हरि नाम का जो ना शिक्षा दे दिया है, तो ये जो ना निमाई पंडित तो सब धर्म तोड़ रहा है। कृष्ण रा कीर्तन में कर नीचे बाण बाण, यही पाप है नवदीप है बे ओजान। तो कहता है ये पाप कर बुरा है, इससे नवदीप गुजर जाएगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली मंत्र है, हर कोई नाम संकीर्तन सुनेगा तो मंत्र की शक्ति जारी रहेगी। देखा दिखाते हैं बड़ी भक्ति, खैर सब कोई अगर नाम लेगा भगवान का तो भगवान के नाम की शक्ति जाती रहेगी लेगा। तो अब वो क्या कहते हैं, आप यहाँ के शासक हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब आपके संरक्षण में हैं। आप निमाई पंडित को बुला करके उनको कहो कि नगर छोड़ करके जाएं, निमाई पंडित को नवदीप से बाहर निकाल दो। उनकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने मीठी वाणी में उनसे कहा, आप लोग घर जाओ, मैं अवश्य ही निमाई पंडित को मना कर दूंगा, कीर्तन करने से मना कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि नारायण हिंदुओं के परमेश्वर हैं और मेरी समझ में आप वही नारायण हो, ऐसा मैं अपने अंधकरण में अनुभव कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? चांद का जी कह रहा है। उनको तो मैंने बोल दिया कि भाई निमाई पंडित को मैं मना कर दूंगा, मैं जानता हूँ कि आप खुद ही तो भगवान हो, साक्षात भगवान हो आप। हिंदू रही सर बड़ ये नारायण से तुम हो मोर मन। राजीव इस प्रकार सुंदर वचन बोलते सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया और हंसते हुए इस प्रकार बोले, छू लिया, छुआ मतलब खुद कर दिया उसको और हंसे भगवान। इत सुने महाप्रभु हसे हसिया कहे के लगे लगे चुका जी रे छुया। आपके मुख से किस नाम के उच्चारण ने आश्चर्य कर दिखाया, इसने आपके सारे पाप कर्मों को ध्वस्त कर दिया, अब आप नितांत शुद्ध हो गए हैं। तुम्हार मुख्य कृष्ण नाम ए बड़े विचित्र पाप सहगी नहिला परम पवित्र। तात्पर्य में लिखा है रूपा जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से संकीर्तन आंदोलन की शक्ति की पुष्टि ये बताती है कि लोग किस प्रकार केवल कृष्ण नाम कीर्तन से शुद्ध हो सकते हैं। काजी मुसलमान था लेकिन उसने अनेक बार कृष्ण का नाम लिया, अतः उसके सारे पाप कर्मों के फल दूर हो गए और वह सारे सांसारिक पापों से शुद्ध हो गया। क्योंकि आपने हरि कृष्ण और नारायण इन तीन नामों का उच्चारण किया है, अतः आप परम भाग्यशाली और पुण्यात्मा है। कौन कह रहा है? चैतन्य महापुरुष शाम का जी। हरि कृष्ण नारायण लैले तीन नाम बड़े भाग्यवान तुम बड़े पुण्यवान। इस सुंदर काजी की आंखों से आंसू बहने लगे, उसने तुरंत ही प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया और मीठी वाणी में वो इस प्रकार बोला, ये सुने काजी दो चक्षे पड़े पानी प्रभु रे चरण छुए बने प्रिय वाणी। आपकी कृपा से मेरे बुरे विचार दूर हो गए, अब मुझ पर कृपा करो जिससे मेरी भक्ति आप में स्थिर बनी रहे। तुम्हारे प्रसाद मोर गोचर कुमति कृपा कर जिन तुमते रहो भक्ति। महाप्रभु ने कहा मैं आपसे एक दान मांगता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। नहीं, आप प्रतिज्ञा करो कि संकीर्तन आंदोलन कम से कम नदिया जिले में नहीं रोका जाए, नदिया जिले में रोका ना जाए। तो तुम यहाँ के अधिकारी हो तो जितना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर संकीर्तन आंदोलन कभी नहीं रोकना। प्रभु कहे एक दान मांगिए तुम आए संकीर्तन न बांध जैसे न है नदी आए। काजी ने कहा भविष्य में मेरे वंश में जितने लोग पैदा होंगे उन्हें मैं ये कड़ी चेतावनी देता हूँ कि कोई भी संकीर्तन आंदोलन को रोकेगा नहीं। मेरे जीवन काल की बात नहीं है, मेरे बाद भी मेरा वंश जब तक चलेगा कोई आंदोलन नहीं रोकेगा। काजी कहे मोर वंश जब तक उपजीवे कहा के ताला के देव कीर्तन न बधिरे। तात्पर्य कृपा लिखते हैं काजी के गंभीर आदेश से आज भी काजी परिवार के जो वंशज हैं किसी भी अवस्था में संकीर्तन आंदोलन का विरोध नहीं करते। यहाँ तक कि पड़ोस में हिंदू मुस्लिम दंगे के दौरान भी काजी के वंशजों ने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए आश्वासनों को सुरक्षित रखा। यानी वे मुसलमान जो काजी के वंश के हैं वो कभी भी झगड़ा नहीं करते हिंदुओं के साथ में। अभी भी 500 साल हो चुका है लेकिन अभी भी वो लोग झगड़ा नहीं करते। ये सुनकर महाप्रभु हरिहरी कहते हुए उठ खड़े हुए, उनके पीछे पीछे अन्य सारे वैष्णव भी पवित्र नाम की ध्वनि करते हुए उठ खड़े हुए। सुने प्रभु हरे बले उठी ना आपन उठी है वैष्णव सब करी हरे ध्वनि। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने चले गए और काजी भी प्रसन्न मन होकर उनके साथ चला। देखा वो काजी भी उनके साथ कीर्तन करते हुए चलने लगा। कीर्तन करे ते प्रभु करे नागमन संगे चली ऐसे काजी उल्लास से मन। महाप्रभु ने पिताजी को घर वापस जाने के लिए कहा और फिर सती माता के पुत्र महाप्रभु नाचते नाचते अपने घर आए। कजिरे बिदाए दिन सचिरे नंदन नाचते नाचते आईना आपन भवन। ये घटना काजी और उस पर भगवान की कृपा से संबंध है। जो भी इसे सुनता है वह सारे अपराधों से छूट जाता है। हे मते काजी रे प्रभु करे ला प्रसंग यहाँ जय सुने तार खंडे अपराध। तो ये घटना चतन चरतामृत की मैंने सुनाई है। अब मैं चाहूंगा कि कुछ प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूंगा? थोड़ी देर के बाद समाप्त करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रश्नोत्तर करेंगे। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, आपका प्रश्न। इनका प्रश्न है कि चांद काजी ने संगीत आंदोलन रोका था तो शायद नौकरी बचाने के लिए रोका था। नहीं, नौकरी बचाने की बात तो फिर बाद में आई। नौकरी बचाने की बात तो बाद में आई, लेकिन पहले तो उसने रोका क्योंकि वो मुसलमान अधिकारी था। मुसलमान अधिकारी तो हिंदुओं को हमेशा डर होना चाहिए मुसलमान अधिकारी का, है ना। जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं तो इससे तो स्वाभाविक है कि वो गुस्सा होंगे। तो वो अधिकारी था, वो जैसा चाहे वैसा नियम बना दे। लेकिन बाद में फिर मुसलमानों ने उससे जब कहा कि अगर इतना कीर्तन होगा, कीर्तन होता रहेगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, वो जो नवाब है वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो इसका उत्तर जो है उसने दूसरे प्रकार से दिया कांता जी ने। पता है उसने कैसे उत्तर दिया? बल्कि उसने उल्टा प्रश्न पूछा कि आप लोग तो कहते हो कि मैं हिंदुओं का कीर्तन रोकूं, ये आप लोग क्यों कीर्तन करते हो? आप लोग मुसलमान हो और मांस खाते हो तो हिंदुओं के देवता का आप लोग नाम क्यों लेते हो? तो उसने कहा अगर मैं उनका कीर्तन मान लो रुकवा भी दूं तो आप लोगों का फिर कीर्तन क्यों हो रहा है? आप लोग कीर्तन क्यों कर रहे हो, है ना। तो उसने उल्टा उत्तर प्रश्न पूछा। और प्रश्न के उत्तर पर उन मुसलमानों ने क्या कहा? वो क्यों कीर्तन कर रहे हैं? वो तो कीर्तन नहीं करना चाहते हैं। वो कीर्तन क्यों कर रहे हैं? हरि नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हैं? कौन बताएगा? हाँ, वो हंसी मजाक करता है हिंदुओं के साथ, हंसी मजाक करता है कि लोग हरी हरी बोलते हैं तो लगता है कि चोरी करते हैं। रात में लोग, तुम लोग चोरी करते हो, दिन में हरी हरी बोलते हो, रात में चोरी करते हो। हरी हरी का मतलब है मुझे चोरी करना है, चोरी करना है। सड़कों में तुम जो है ना निकलते हो हरी हरी कीर्तन करते हुए, तो मतलब क्या, मकानों को देखते हो कि यहाँ चोरी करना है, इसलिए तुम हरी हरी बोलते हो। तो ये मजाक में बोला था और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका मुंह पकड़ गया। तो कहते हैं पता नहीं इनके इस मंत्र में क्या चमत्कार है, कुछ शक्ति है, पता नहीं क्या शक्ति है, हमारे मुंह को पकड़ गया। और कितने भाग्यशाली थे वो मुसलमान जो नहीं बोलना चाहते और हरे नाम बोल रहे हैं। आपका प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि यहाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने यही घोषणा की है कि कुरान कल्पना से भरी है, जबकि कुरान जो है ना जो मोहम्मद साहब थे तो उनके द्वारा सब सम्मानित है जो भी हो। हाँ, अगर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कल्पना से भरी है तो वो भी ठीक है, लेकिन कुछ और भी कारण बताए जाते हैं कि जिस समय उनका इस्लाम धर्म बना था तो वो अरब के जो है ना रेगिस्तान में जो लोग थे, जहाँ की कुछ पैदावार नहीं होती, कुछ फसलें नहीं लगती हैं, अन्न मिलते नहीं, उपजते नहीं, पैदा ही नहीं होता है, तो उन लोगों को जो है मतलब इस तरह से स्वीकृति मिली थी पशुओं की हत्या करने की। और गो हत्या के लिए भी कहीं प्रभुपाद जी समर्थन करते हैं, किसी स्थिति में अगर भोजन ना मिले और गाय है वो दूध नहीं दे रही है तो गाय की हत्या की जा सकती है। अगर ऐसी स्थिति में कि जब गाय दूध नहीं दे रही है और भोजन भी किसी प्रकार नहीं मिल रहा है तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए गो हत्या की जाती है। तो जो भी हो, लेकिन इनका धर्म मतलब उतना पूर्ण नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं,
तो उतना पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रश्न यही है कि तुम लोग उसी गाय का दूध पीते हो, उसी की हत्या करते हो, है ना। अगर गाय दूध नहीं दे रही है तो दूसरी बात, गाय का तुम जो दूध पीते हो तो फिर तुम जो है ना उसकी हत्या करते हो, ये कहाँ तक तुम्हारा जो है ना उचित है। तो वास्तव में आप ये बातें जो उस समय की कुछ हद तक उचित थी, वो तो बिल्कुल उचित नहीं है वो बातें, जबकि समय सब कुछ उपज रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने फिर भी खुले तौर पर विरोध नहीं किया, ईसाइयों का तो खुले तौर पर विरोध किया कि तुम लोग पशुओं की हत्या क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है दाऊद सेल डोंट किल, तुम लोग क्यों हत्या कर रहे हो। लेकिन मुसलमानों का विरोध इसलिए नहीं किया प्रभुपाद ने, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में अगर इजाजत है किसी कार्य की तो उन्होंने विरोध नहीं किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु भी हंस दिए, शांता जी ने कहा कि हमारे जाति का जो है ना दबाव है, इसे हमें मानना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर और आगे कुछ बात बढ़ाई नहीं शांता जी को, कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है ना। चैतन्य महाप्रभु हंसे, तो इससे भी पता चलता है कि हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो इसलिए उन्होंने भी कोई इस संबंध में विरोध नहीं किया, ईसाइयों का विरोध किया खुले तौर पर, कि तुम्हारे जो ना धर्मशास्त्र में अगर लिखा हुआ है 10 जो आदेश है उनमें से ये भी आदेश है, तो तुम लोग क्यों हत्या करते हैं, है ना। और जब ईसाइयों ने कहा कि नहीं वो किल का मतलब जो है मनुष्य की हत्या से है, कि दाऊद से तुम मनुष्य की हत्या नहीं करोगे, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारे जो ईसा मसीह थे क्या उनको अंग्रेजी भाषा का इतना भी ज्ञान नहीं था कि मनुष्य की हत्या के लिए, तो फिर वो मर्डर कहते हैं कि दाऊद शैड नॉट मर्डर, है ना। किल का तो मतलब है सामान्य, किसी की भी हत्या नहीं करोगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ईसाइयों का तो विरोध किया है। तो जो भी हो, अब वो लोग जो है ना अगर अपने धर्म शास्त्र के अनुसार अगर कुछ ऐसा अंकित कार्य कर रहे हैं तो फिर उनका दोष नहीं माना जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनके शास्त्र को दोषी ठहराया और उनको फिर निर्दोष मान लिया, आप समझे। तो इस तरह से जो ना अपना अपने धर्म शास्त्र के अनुसार अगर वो कुछ कार्य कर रहे हैं तो फिर उनका दोष नहीं है, उनके धर्म का ही दोष है ना। तो जो भी हो, इस तरह से फिर कोई व्यक्ति जो है ना अगर अपने धर्म शास्त्र के अनुसार अगर आचरण कर रहा है तो उसको फिर आगे उन्नति करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर अपने शास्त्र के अनुसार और जो बातें मना की गई हैं तो उनको बिल्कुल ना करें। तो कोई अगर कट्टर मुसलमान है और अपने शास्त्र के अनुसार जो है ना जो कार्य मना किए गए हैं ना, अभी आजकल तो वो लोग उनको भी ना आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसमें जो ना शराब बिल्कुल वर्जित है, शराब पीना बिल्कुल वर्जित है, तो वो लोग अभी शराब वराब पी रहे हैं, तो इस तरह से वो जो है अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, धन्यवाद। जय दरा श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्षदी ललित शेखर गौरता इसी तरह विष्णु हनुमान की जय। हरे कृष्ण।